एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाले उपन्यास पर बात करने वाले हैं, डेविड रॉब्लेव्स्की का द स्टोरी ऑफ एडगर सॉटल। इसके लेखक डेविड रॉब्लेव्स्की खुद विस्कॉन्सिन के हैं। पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, फिर राइटर बने, और कहते हैं कि यह उनका पहला नॉवेल है जिसे लिखने में उन्हें 10 साल से ज्यादा लगे।
अच्छा,
10 साल?
हाँ
हाँ। और उनके अपने जो अनुभव है ना विस्कॉन्सिन के ग्रामीण जीवन के, वो इसमें साफ दिखते हैं। 2008 में आई थी ये किताब और आते ही मतलब छा गई।
हाँ, ओपरास बुक क्लब में भी गई थी, बेस्ट सेलर थी।
बिल्कुल। और इसकी एक खास बात यह है कि ये शेक्सपियर के हैमलेट का एक रीइमेजिनिंग है। मतलब कहानी का ढांचा वही पर माहौल बिल्कुल अलग, उत्तरी विस्कॉन्सिन के जंगल।
हैमलेट लेकिन विस्कॉन्सिन में, इंटरेस्टिंग।
हाँ। और ये उस अमेरिकन पास्टोरल लिटरेचर की परंपरा में भी आती है जो अक्सर गांव, प्रकृति और इंसानी रिश्तों के ताने बाने को दिखाता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस कहानी की जो परतें हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनको थोड़ा खोलें, प्लॉट, किरदार, मैसेज सब पर बात करें।
बिल्कुल, कहानी का सेटअप बड़ा मजेदार है। 1970s का दशक और जगह है उत्तरी विस्कॉन्सिन के बहुत ही, आप कह सकती हैं, रिमोट जंगल। यहाँ रहता है सॉटल परिवार, गार, उनकी पत्नी ट्रूडी और बेटा एडगर। पर ये कोई आम परिवार नहीं है, इनकी एक खासियत है, एक विरासत है।
वो कुत्ते हैं ना?
हाँ, सॉटल कुत्ते। कई पीढ़ियों से ये लोग एक खास नस्ल के कुत्तों को ब्रीड और ट्रेन कर रहे हैं। और ये कुत्ते सिर्फ जानवर नहीं है, वो असाधारण रूप से समझदार हैं, इंट्यूटिव हैं, और इंसानों के साथ उनका एक अलग ही लेवल का कनेक्शन है। ये कुत्ते ही उनकी पहचान है।
एक तरह की कला।
बिल्कुल। और कहानी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है एडगर सॉटल। एडगर जन्म से मूक है, मतलब बोल नहीं सकता। लेकिन उसकी ये खामोशी ही उसके और कुत्तों के बीच, खासकर उसकी फेवरेट एल्मंडाइन के साथ, एक गहरे बिना शब्दों वाले रिश्ते का आधार बनती है। वो इशारों से, बॉडी लैंग्वेज से, एक गहरी समझ से जुड़ता है।
ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है।
सही कहा। और कहानी की शुरुआत में इसी शांत दुनिया का, मतलब फार्म की जिंदगी का, बड़ा सुंदर चित्रण है। एकाकी है पर सुकून है। एडगर कुत्तों को ट्रेन कर रहा है, उनकी अपनी साइन लैंग्वेज है, एल्मंडाइन से उसका गहरा लगाव, ऐसा लगता है मानो शब्दों की जरूरत ही नहीं।
हाँ बिल्कुल, एक शांत संसार वाली फीलिंग आती है। कुत्तों की आवाजें, जंगल का माहौल, परिवार के बीच की वो अनकही समझ।
और इस शांति का आधार है एडगर के पिता गार सॉटल। वो एक तरह से परंपरा, स्थिरता और उस क्राफ्ट्समैनशिप के प्रतीक हैं जो सॉटल कुत्तों को पालने में लगती है। गार और एडगर का रिश्ता भी वैसा ही है, खामोश पर बहुत गहरा।
लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये शांति भंग होती है। कहानी में ट्विस्ट आता है गार के भाई क्लॉड के आने से।
क्लॉड?
हाँ। अब क्लॉड का कैरेक्टर बड़ा चार्मिंग किस्म का है, बातें अच्छी करता है, लेकिन उसके आने से ना एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। लगता है कुछ ठीक नहीं है।
हाँ, एक अंडरकरंट सा महसूस होता है खतरे का।
एग्जैक्टली। और ये डर जल्दी सच साबित होता है। एक रात भयंकर तूफान के दौरान गार की खलियान में मौत हो जाती है, अचानक। ऑफिशियली कहा जाता है कि सेरेब्रल एन्यूरिज्म हुआ, मतलब ब्रेन में नस फट गई। लेकिन एडगर जो वहीं था उसे यकीन नहीं होता।
उसे लगता है कुछ और हुआ है।
हाँ, उसे शक है कि क्लॉड ने गार को कोई इंजेक्शन दिया है, कोई जहर। और ये शक तब और गहरा हो जाता है जब उसे लगता है कि उसने अपने पिता की आत्मा देखी है, या शायद ये उसका अपना इंट्यूशन है जो क्लॉड की तरफ इशारा कर रहा है।
बाप रे, तो यहां से सब बदल जाता है।
बिल्कुल। शांति खत्म, शोक और शक का माहौल, और यहीं पर हैमलेट का कनेक्शन एकदम साफ नजर आने लगता है।
अच्छा, कैसे?
देखिए ना, क्लॉड बिल्कुल शेक्सपियर के क्लॉडियस जैसा है। भाई की मौत के बाद उसकी पत्नी और एक तरह से उसकी जगह लेने वाला, और गार वो स्वर्गीय राजा हैमलेट की तरह है।
ओ हाँ, बिल्कुल सही। क्लॉडियस गार, किंग हैमलेट।
हाँ, तो कहानी को एक क्लासिक ट्रेजेडी का फ्रेम मिल जाता है, लेकिन एडगर का मूक होना और विस्कॉन्सिन की सेटिंग इसे एकदम नया बना देती है। एडगर की हालत सोचिए, वो सच जानता है या उसे लगता है कि वो जानता है पर वो बता नहीं सकता।
कोई सबूत नहीं और आवाज भी नहीं, कितनी बेबसी होगी।
बहुत ज्यादा। उसकी माँ ट्रूडी अपने दुख में है। दुनिया एकदम से अनजान और खतरनाक लगने लगती है। जो खामोशी पहले उसकी ताकत थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।
और इसी बीच ट्रूडी की हालत भी समझने वाली है। वो दुखी है, अकेली पड़ गई है और क्लॉड इसी का फायदा उठाता है। वो हमदर्दी दिखाता है, सहारा बनता है, फार्म के काम में मदद करता है और धीरे धीरे ट्रूडी का भरोसा जीत लेता है।
हाँ।
और फिर
उनके बीच एक रोमांटिक रिश्ता शुरू हो जाता है। एडगर के लिए तो ये भयानक होगा।
सोचिए, एक गहरा सदमा, विश्वासघात का एहसास। वो अपनी माँ को अपने पिता के कातिल के साथ देख रहा है। और तो और, कुत्ते तक क्लॉड को पसंद नहीं करते, वो उसके आसपास अजीब बर्ताव करते हैं।
जानवरों का इंट्यूशन तो कमाल का होता है।
हाँ, और ये सब देखकर एडगर का शक और बढ़ता है। वो अंदर से टूट जाता है, उसका व्यवहार अजीब होने लगता है। माँ से झगड़े, स्कूल में दिक्कतें, वो शक का बोझ उसे संभाल नहीं पाता।
ट्रूडी का क्या, हैमलेट की गर्टरूड से तुलना होती है, पर क्या वो उतनी ही सीधी विलन है? या वो भी परिस्थितियों की मारी है? दुख, अकेलापन, फार्म चलाने की जिम्मेदारी, क्या वो जानबूझकर आंखें मूंद रही हैं?
ये सवाल कहानी छोड़ देती है। शायद वो कॉम्प्लिकेटेड है, शायद वो खुद कंफ्यूज है।
और फिर वही मुद्दा आता है, कम्युनिकेशन। एडगर की खामोशी उसे कैसे रोकती है? वो कितना भी तेज ऑब्जर्वर हो, कितना भी समझता हो, पर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहा।
सच जानना एक बात है, उसे साबित करना बिल्कुल दूसरी।
बिल्कुल। और इसी हताशा में एडगर एक खतरनाक कदम उठाता है, चाचा को बेनकाब करने के लिए।
वो चूहेदानी वाला सीन।
हाँ, जैसे हैमलेट ने नाटक के जरिए क्लॉडियस का सच उगलवाया था, वैसे ही एडगर कुत्तों की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है। वो लोगों के सामने एक सीन क्रिएट करता है कुत्तों से, ये दिखाने के लिए कि गार को कैसे जहर दिया गया होगा।
क्लेवर।
हाँ, और क्लॉड ये देखकर आपा खो देता है, चिल्लाने लगता है, गुस्सा हो जाता है। एडगर के लिए ये कन्फेशन जैसा है, लेकिन क्लॉड बहुत शातिर है। वो फौरन कहानी पलट देता है, वो एडगर को ही पागल, खतरनाक साबित करने लगता है।
ओह नो।
और इसी गहमा गहमी में गलती से एडगर के हाथ से फैमिली डॉक्टर को चोट लग जाती है।
अब तो मामला और बिगड़ गया।
हाँ, एडगर दूरी तरह डर जाता है, उसे लगता है अब क्लॉड उसे फंसा देगा, और घबराहट में वो भाग जाता है,
भाग जाता है कहाँ?
फार्म से, और अपने साथ 3 सॉटल पिल्लों को भी ले जाता है। वो विशाल चेकवा मॉर्गन नेशनल फॉरेस्ट में गायब हो जाता है।
पिल्लों के साथ
हाँ,
जंगल में।
ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एडगर की मासूमियत खत्म, वो अब सिर्फ विक्टिम नहीं, भगोड़ा है। न्याय और बदला सब गड्डुम मुड्ड हो गया है।
और जंगल, उसका क्या मतलब है कहानी में?
जंगल एक सिंबल है। एक तरफ तो वो सभ्यता के धोखे से दूर प्रकृति की पनाह है, लेकिन दूसरी तरफ वो खतरनाक भी है, सर्वाइवल की लड़ाई है। यहीं उसकी मुलाकात हेनरी लैम नाम के एक अजीब से आदमी से भी होती है।
ओके, तो वो जंगल में रहता है कुछ टाइम।
हाँ, कई महीने वो उन पिल्लों को पालता है, जिंदा रहने की कोशिश करता है। फिर एक दिन उसे अखबार का एक टुकड़ा मिलता है।
और उसमें?
उसमें खबर होती है एलमंडाइन की मौत की, एक कार एक्सीडेंट में।
ओह, एलमंडाइन, उसकी सबसे प्यारी साथी।
हाँ, ये खबर उसे तोड़ देती है, लेकिन साथ ही उसे वापस जाने की हिम्मत भी देती है। अब उसके मन में बस क्लॉड से बदला लेने की आग है।
तो वो वापस फार्म जाता है।
हाँ, लेकिन फार्म पर क्लॉड का कंट्रोल और बढ़ चुका है। मां ट्रूडी भी जैसे फंसी हुई है, लेकिन एडगर का फोकस अब सिर्फ बदला नहीं है।
और क्या है?
वो सॉटल नस्ल की विरासत बचाना चाहता है, वो शीशियां जिनमें कुत्तों का सीमेन सहेज कर रखा गया था पीढ़ियों के लिए।
ओह राइट, वो जेनेटिक लाइन।
हाँ, दोनों में भयानक लड़ाई होती है। लालटेन गिरती है और खलिहान में आग लग जाती है।
आग खलिहान में।
हाँ, क्लॉड एडगर को जहर देने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मरते मरते एडगर वहां पहुंचे शेरिफ को उन शीशियों की जगह का इशारा कर देता है।
और क्लॉड?
क्लॉड आग में जलकर मर जाता है, और ट्रूडी वो सब कुछ खो देती है। पति, बेटा, देवर, सब खत्म।
हे भगवान, ये तो पूरी ट्रेजेडी है।
है ना, बिल्कुल क्लासिक ट्रेजेडी। भाग्य, फ्री विल, ये सब सवाल उठते हैं। खलियान का जलना भी कितना सिंबॉलिक है। वो फैमिली का सेंटर था, उनकी विरासत का घर, और वही उनकी तबाही का गवाह बना। एडगर को न्याय मिला शायद, पर कीमत बहुत भारी।
लेकिन कहानी का अंत, वो कुत्तों वाला सीन है ना?
हाँ, वो बहुत पावरफुल है। जलते खलिहान से सौटे कुत्ते भाग निकलते हैं, और उनमें वो 3 पिल्ले भी हैं जिन्हें एडगर जंगल ले गया था।
वो बच जाते हैं।
हाँ, और वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं। इस अंत में एक अजीब सी उम्मीद है, दुख है, तबाही है, पर वो विरासत, वो कुत्ते, वो बच गए। जैसे प्रकृति कह रही हो कि इंसानी फितरत भले पूरी हो, पर जीवन, वफादारी, ये सब जारी रहेगा।
ये गहरा है।
अगर आप मुख्य थीम्स को एक बार फिर से देखें, तो सबसे बड़ा है कम्युनिकेशन और साइलेंस का। एडगर की मुक्तता, कैसे बिना शब्दों के भी गहरा रिश्ता बन सकता है, और कैसे शब्दों के होते हुए भी हम सच नहीं कह पाते।
हाँ, सबसे जरूरी बातें कहना सबसे मुश्किल होता है।
बिल्कुल। फिर है लॉयल्टी और बिट्रेयल। वफादारी और धोखा, कुत्तों की वो अटूट वफादारी और इंसानों का धोखा, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत स्ट्राइकिंग है।
एलमेंडाइन का किरदार तो खास तौर पे।
हाँ, फिर अच्छाई बुराई की लड़ाई, पर वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। क्लॉड बुरा है, पर एडगर का बदला भी उसे अंधेरे में ले जाता है, न्याय और बदले की वो महीन रेखा।
सही, प्रकृति बनाम सभ्यता भी एक थीम है, जंगल का सच और समाज का दिखावा।
और फैमिली लिगेसी, वो सॉटेल कुत्ते सिर्फ जानवर नहीं, पीढ़ियों की मेहनत है, जिसे क्लॉड मिटाना चाहता है और एडगर बचाने के लिए जान दे देता है। और हाँ, भाग्य बनाम इच्छा शक्ति वाला एंगल भी है, हैमलेट वाला।
और एडगर की ऑब्जर्वेशन की पावर, वो बोल नहीं सकता पर देखता और महसूस बहुत गहराई से करता है, यही उसकी ताकत भी है, बोझ भी। और लेखक की भाषा भी बड़ी काव्यात्मक है ना।
बहुत खूबसूरत, और वो जो कुत्तों के पर्सपेक्टिव से भी नरेट करते हैं कुछ हिस्से, वो कमाल है।
हाँ, वो कहानी को एक अलग ही डायमेंशन देता है।
इमोशनली तो ये किताब निचोड़ देती है। एडगर की बेबसी, उसकी पीड़ा बहुत महसूस होती है। एलमंडाइन की मौत, गार का जाना, ट्रूडी का अकेलापन, बहुत भारीपन है।
हाँ, ये एक भारी कहानी है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है, सच क्या है, न्याय क्या है, कम्युनिकेशन के मायने क्या है, कुत्तों के साथ एडगर का वो रिश्ता, वो इंसानी रिश्तों के छल कपट पर सवाल उठाता है।
वो कहावत है ना, शायद किताब में भी है, कि हर कुत्ता जानता है कि लात प्यार से मारी गई है या नफरत से।
समझ शब्दों की मोहताज नहीं।
बिल्कुल, शायद इसीलिए ये उपन्यास इतना असरदार है। ये यूनिवर्सल इमोशंस को एक बहुत ही यूनिक सेटिंग में दिखाता है। हैमलेट का रीटेलिंग होते हुए भी ये बिल्कुल ओरिजिनल लगता है।
और कई सवाल छोड़ जाता है पाठक के लिए।
तो अंत में ये कहानी शायद हमें याद दिलाती है कि संवाद के, कम्युनिकेशन के कई तरीके हैं, और कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा कह जाती है।
और ये भी कि नुकसान और ट्रेजेडी के बाद भी वफादारी और प्रेम जैसे बंधन किसी न किसी रूप में जिंदा रह सकते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।